ओम शांति। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में हम सबके जीवनदाता, भाग्य विधाता प्राणेश्वर बाप दादा का दिल से स्वागत करेंगे। बाबा की उपस्थिति का अनुभव के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बाबा ने कहा है कि मैं जहां भी प्रोग्राम चलता है वहां मैं आ जाता हूं, तो हम सबको ऐसा विश्वास है कि आज बाबा भी इस मेडिटेशन हॉल में उपस्थित रहेंगे। तो सर्वप्रथम बाप दादा का स्वागत, साथ में हमारे दोनों भाई अनिल भाई, आप यहाँ का एकोमोडेशन विभाग देखते हैं, और संजय भाई को भी आप रोज देखते होंगे, माइक यहाँ ला करके भाई बहनों को देते हैं, क्लास कराने वालों को, साउंड डिपार्टमेंट में आप समर्पित हैं। तो आप दोनों हमारे अनुभवी समर्पित भाइयों का भी सभी के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आज के इस सभा में जो भी भाई बहन बैठे हैं, श्रीलंकन और उसके अलावा भी और कुछ देशों से अगर हैं, तो आप सब कभी बाबा के इस प्रांगण में आज के इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में हम दोनों भाइयों का सुनेंगे अलौकिक जीवन यात्रा। वैसे तो सभी का विशेष अनुभव रहता है, ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं होगा जिसको बाबा के परिवार का अनुभव नहीं होगा। और जब हम एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और सचमुच हम जब एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं तो उनके जीवन की क्या अनुभूति रही उनके हम नजदीक से जान पाते हैं। बाबा के बनने के पहले का जीवन, बाबा के बनने के बाद का जीवन, और इस अलौकिक यात्रा में किस तरह के पड़ाव हमारे सामने आते हैं, इससे जानने की उत्कंठा सबको रहती है। वैसे तो हमारे बाबा के घर में जो भी समर्पित हैं उन सभी का विशेष अनुभव रहता है। पहले तो बाबा का बनना, ज्ञान को अच्छी तरह से समझना, फिर मधुबन में समर्पित हो जाना, ये संगम युग का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाबा मधुबन वालों को बहुत याद करते हैं, मधुबन वाले के लिए कहते हैं कि ये मेरे दिल पर रहते हैं, और सभी बाबा के इस मधुबन के सो केस के श्रृंगार हैं। तो उसमें से दो अनमोल रत्न हमारे मध्य हैं और इनकी जीवन कहानी हम सब सुनेंगे अभी। तो जैसे हर एक को अपना बचपन याद रहता है, बाल्यकाल, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि 5 साल के बाद जो कुछ भी हुआ वो हर एक को याद रहता है। और बाबा का एक गीत भी बजता है, बचपन के दिन भुला ना देना। हम सबके साथ दो बचपन बीतता है, पहला लौकिक बचपन और दूसरा अलौकिक बचपन। लौकिक बचपन को भी जानना बहुत जरूरी होता है। लौकिक बचपन की अनुभूति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं सर्वप्रथम हमारी बीच अनिल भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं अनिल भाई कि आपका अपना बचपन, आपका अपना लौकिक जन्म स्थान कहां हुआ और बचपन की क्या रुचि थी? लौकिक में आप कितने भाई बहन हैं? माँ बाप का क्या व्यवसाय चलता था? घर का कैसे कारोबार था? क्या माहौल था? उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं अनिल भाई।
ओम शांति। बनारस, जिसको काशी कहते हैं, वहां से कुछ दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलिया। हमारा लौकिक जन्म स्थान वहां रहा, लेकिन हमारी पालना और लौकिक स्टडी बनारस के ही समीप मऊ करके है, मऊनाथ भंजन, वहां पर हुआ। और बचपन से ही हमने देखा कि जो हमारा हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो लगभग धार्मिक थी। जैसे परिवार में यदि भोजन आदि बनाते थे तो पहले भोजन का कुछ हिस्सा बनने से पहले ही भगवान के नाम से निकालते हैं और उसको वीकली या मंथली मंदिर पर, टेंपल पर या महात्माओं को भेज देते थे। तो ये देखकर हम लोग सीखते थे कि कैसे भगवान के नाम से दिया जाता है। और दूसरी बात कि जब हम क्लास, मतलब पांच छह वर्ष के, तो सभी परिवार के लोग मंदिर पर जा रहे थे। तो हमने पूछा कि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सबने कहा आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आज श्री कृष्ण का जन्म है, जन्मोत्सव होगा, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो हमको उत्कंठा भी हुई कि कैसे उनका जन्म होगा। वो सीन हमेशा मुझे याद रहता है जबकि हम 5 वर्ष या 6 वर्ष के रहे होंगे। तो हमको ऐसा ही संकल्प आता था, जैसे विजन जैसा बनता था कि कई प्रकार की किरणें फैल जाएंगी, प्रकाश फैल जाएगा और उसके बीच से श्री कृष्ण छोटा बच्चा जैसे आ जाएगा। ऑटोमेटिक, कोई विजन बनाते नहीं थे। तो बचपन से ही ऐसा एक अंदर भरा हुआ था ये भावनाएं, और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी धार्मिक, तो इसलिए अध्यात्म की तरफ झुकाव होना और आध्यात्मिकता से जुड़ना बहुत सहज रहा मेरा था।
जी, कितने भाई बहन हैं अनिल भाई?
ऐसे तो हम लौकिक में हम अकेले हैं और एक हमारी लौकिक बहन है, लेकिन कंबाइंड फैमिली है, बड़ा परिवार है इसे सब मिला के, लेकिन लौकिक में तो हम एक भाई और एक बहन है।
जी, बहुत अच्छा। जैसे कि अनिल भाई ने बताया कि प्रायः भारत में जो भी बाबा के बच्चे होते हैं या बनते हैं या नहीं भी बने हैं, तो यहाँ पर तो धार्मिक प्रवृत्ति रहती ही है। और जैसे आपने बताया कि श्री कृष्ण को मानते थे आपके परिवार में और उनकी जन्माष्टमी के बारे में कैसे सुने थे। हमारे मध्य संजय भाई, आप भी काफी वर्षों से यहाँ समर्पित हैं। मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ संजय भाई। संजय भाई हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, सिंधी हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा लौकिक में सिंधी थे, तो विशेषकर जो बाबा के सिंधी परिवार से ज्ञान में चलते हैं, उनको विशेष नशा रहता है। तो सिंधी भाई होने के नाते हमारे संजय भाई को भी बहुत नशा रहता है। इस जन्म में, लास्ट जन्म में भी मैं, जैसे बाबा सिंधी थे, मैं भी सिंधी हूँ। तो आपका बचपन कहाँ, आपका जन्म हुआ और किस तरह के परिवार में आप रहे, कितने भाई बहन हैं और बाल्यकाल में क्या रुचि थी आपकी, उसके बारे में हमारे भाई बहनों को अवगत कराइए।
ओम शांति। शरीर का नाम बीके संजय भाई, और लौकिक में छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं और बिलासपुर में ही हमारा जन्म हुआ और सिंधी परिवार के थे तो बहुत माना बड़ी फैमिली थी, चाचा दादा दादी सब इकट्ठे ही सारे परिवार में रहते थे और बचपन से ही हमको माना अपने पैरों पर ही खड़े होना सिखाया जाता था, जाता रहा है, ताकि कहीं भी बच्चे को कोई तकलीफ ना आए पूरे जीवन में। तो पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में हुई, हिंदी इंग्लिश दोनों रहा, पर पढ़ाई में हमारी रुचि थोड़ी कम रहती थी तो फिर परिवार में सबने यही सोचा कि इनको बिजनेस ही करना है आगे, तो फिर हमको बिजनेस की ओर ले जाने लगे। दुकान पर आना जाना होता रहा और दुनिया के बारे में उतना तो हम लोग समझे नहीं थे कि क्या है कैसे चलना होता है, बस जैसे परिवार में गाइड करते थे माता पिता कि ये चीज ऐसे होती है ये ऐसे होती है, हमारा अनुभव के तौर पर जो वो सिखाते गए हम सीखते गए और बचपन से ही यही रहता था कि कुछ बड़ा करना है, माना जो हमारे परिवार में हो रहा है इनसे भी कुछ अच्छा करना है, तो हर बार यही संकल्प इमर्ज होता रहता था। और परिवार में हम तीन भाई हैं और एक मेरे से बड़ी बहन है, ज्ञान में अभी वो लोग संबंध संपर्क में है और बाबा ने अकेले ही मुझे ही उस परिवार से चुना है और इस बात की भी खुशी है कि सभी उस ज्ञान को स्वीकार तो करते हैं लेकिन अपने समय अनुसार वो आते रहते हैं और संपर्क में रहते हैं।
जी मैं और जानना चाहता हूँ थोड़ा सा संजय भाई आपसे कि जैसे बचपन में एक रुचि दिखती है, जिस कभी किसी को खेलकूद के प्रति रुचि होती है, कभी किसी को पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि होती है, कभी कोई बचपन से किसी भक्ति पूजा पाठ में विशेष आकर्षण रहता है। आपका जैसे आपने बताया कि भाई घर में बिजनेस का माहौल था, आपकी अपनी रुचि क्या थी बचपन में, एकदम छोटेपन में, 5 साल से 10 साल के बीच में?
उस समय मेरी ये रुचि रहती थी कि जो भी माना हमारे मम्मी पापा हैं और चाचा हैं ये लोग जो कर रहे हैं बस उसकी ओर ही वो जिस रूप से चलते थे हमें लगता था ये टेक्निक हमें भी आनी चाहिए, तो मैं सीखने की रुचि, हर चीज को समझने की रुचि, चाहे कई बार हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते थे तो मैं 2-2 घंटा वहाँ बैठ जाता था, वो देखता था कि ये लोग रेडियो कैसे खोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो अंदर डेवलप हो जाता था कि ये इसकी रुचि इसमें है, तो सीखने की प्रवृत्ति बचपन से ही रही है और आज दिन तक वो चली आ रही है।
जी 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 बहुत अच्छा, आपके हम दोनों के बचपन जान गए, लौकिक बचपन। अनिल भाई मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जैसे संजय भाई ने बताया कि उनकी रुचि इस तरह की थी, आपकी बाल्यकाल की रुचि क्या थी और इसके अलावा साथ में यह भी बताइए कि आपको ईश्वरीय ज्ञान कहाँ मिला, कब मिला और किस प्रकार से मिला?
जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही कि धार्मिक परिवार था, तो इसी प्रकार से क्या होता था कि जैसे रोज जो भोजन बनाते थे पहले सब कुछ निकालेंगे मंदिर पर देने के लिए या महात्मा जी को देने के लिए, तो इसी प्रकार निकालते थे लोग, तो हमारे लौकिक परिवार के भी और आसपास के भी वो कई बार वीकली एक टाइम हमको कहते थे कि आप ले जाओ ये मंदिर पर दे के आ जाओ, तो मेरा काम होता था सबका जस्ट देना। तो इसी प्रकार से हम बहुत छोटे ही थे तो वहाँ गली में ही ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था, उस समय सेंटर बहुत छोटा था, तो हम जानते थे बचपन से ही, मेरी लौकिक माँ और नानी हमेशा वहाँ पर आ जाते थे लेकिन मैं नहीं जाता था, लेकिन जानता था अच्छी तरह से चित्र आदि भी बुक्स आदि भी लौकिक घर में होती थी तो उसको थोड़ा पढ़ते भी थे हम, ज्ञानामृता देवी और, तो इस प्रकार से हम लेकर के जाते थे। तो कुछ दिनों बाद मंदिर पर नहीं भेज के वो लोग हमको कहते थे ले जाओ ये ब्रह्मा कुमारी में दे के आ जाओ। तो जब हम जाते थे सेंटर्स पर तो वहां बहने कहती थी कि आप थोड़ा सुनो कुछ समझ के जाओ, लेकिन हम कहते थे नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी हम जा रहे हैं स्कूल। तो बोल के हम चले जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब दीदी ने कहा, और उस समय मैं पढ़ा भी था, वहां बोर्ड लगाया था बाहर कि अब नहीं तो कब नहीं, ये पॉइंट हमको भी पता नहीं कैसे एकदम टच कर गई कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसके बाद हमने तुरंत ही उसी समय मैंने रुक करके और उसको समझना शुरू कर दिया
जी। तो इस तरह से आपने 7 दिन का कोर्स किया। क्या आयु थी उस समय, उम्र कितनी थी लगभग?
उम्र हमारी उस समय 18-19 रही होगी
जी। तो 18-19 साल की उम्र में आपको बाबा का ज्ञान मिला, और कई बार बाबा कहते हैं कि रास्ते चलते ब्राह्मण फंसे, तो देखो नहीं चाहते हुए भी जैसे आपने बताया कि शुरू में कहा कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने इंटरेस्ट लिया और ज्ञान को सुनना प्रारंभ किया। मैं इसी से संबंधित एक और मेरे मन में जिज्ञासा है कि आपने पूरा 7 दिन का कोर्स किया होगा या बाबा की बातें सुनी होगी, कौन सी ऐसी बात आपको प्रिय लगी जो आपको याद हो कि ये मेरे जीवन के काम की बात है, या इसको सुनने के बाद मुझे ये ज्ञान में चलना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट कौन सी बात से आपको जागृत हुई?
मुझे भी बिल्कुल वंडर लगता है कि जैसे हम ज्ञान समझते हैं पहला लेसन दूसरा लेसन, इसी प्रकार से मेरे अंदर भी जैसे प्रश्न उत्पन्न होते थे। कई बार हम क्या होता था, जैसे हम बच्चे थे अब पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते अचानक हमको घबराहट से होने लगती थी कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। तो मैं खुद देखता भी था कि ये हाथ है मैं हूँ, ये मैं कहाँ हूँ, तो ये मैं समझता था कि ये जरूर अलग है, मैं कुछ और हूँ। और उस समय गीता के स्टडी भी बहुत मेरे पास था, गीता का बहुत अच्छी तरह से मैंने अध्ययन किया था, और उस समय काशी बनारस के बहुत फेमस प्रसिद्ध विद्वान थे पंडित उमा शंकर तिवारी, तो उनसे मैंने पूछा भी था गीता के ऊपर प्रश्न प्रवचन के बीच में। मैंने पूछा कि जो आप कहते हैं कि अपने धर्म के लिए मर मिटना चाहिए, तो किस धर्म के लिए मर मिटना चाहिए? मान लो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई क्रिश्चियन है, तो कोई भी किस धर्म के लिए मरे? तो उन्होंने कहा कि जो जिस धर्म का है उसी धर्म पे मर मिटना चाहिए
जी।
तो थोड़ा मुझे ये लगा कि ये तो थोड़ा विवादास्पद बात लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये प्रश्न भी मेरे अंदर उत्पन्न होता था। और दूसरी बात, ये जो धर्म की बात है कि किस धर्म पे मर मिटना चाहिए, तो एक प्रश्न तो ये था, और दूसरा प्रश्न था कि हम भगवान किसको माने? यदि मान लो हम श्री कृष्ण को मानते हैं तो राम को क्यों नहीं माने? अगर राम को मानते हैं तो शंकर को क्यों नहीं माने? शंकर को माने तो दुर्गा को क्यों नहीं माने? हम क्यों भेदभाव करें, किसको मानना चाहिए? तो ये भी प्रश्न, तो ये दो प्रश्न मेरे पास बहुत थे और अंदर ही अंदर, कि एक तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, मेरी आवाज कहाँ से आ रही है, और दूसरी भगवान कौन है। तो जो हम, जैसे मैंने कहा ना कि पहले ही दिन बहन जी ने बोला कि आज आप कुछ सुन के जाओ, और मैं रुक गया। तो पहले दिन ही उन्होंने, मैंने कुछ पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, वो बताते थे जाते थे स्टेप बाय स्टेप, और हमको आंसर जैसे पहले ही दिन मिल गया। तो उन्होंने जब कहा कि आप आत्मा हो, तो उसको तो मैं ढूंढ रहा था, गीता में मुझे मालूम था कि आत्मा भृक्ति में रहती है, लेकिन मैं ही आत्मा हूं ये कभी फील नहीं किया। तो जब उन्होंने कहा ना कि आप ही आत्मा हो, तो ऐसी ये बात टच कर गई कि अच्छा मैं आत्मा हूं। और उन्होंने जब बताया कि आपका धर्म शांति है, और देखो आप अशांत होते होते कैसे है ना, आप फिर शांत होना चाहते हो ना, तो मुझे वो बात जो हमने पूछा था पंडित उमा शंकर तिवारी से, वो तुरंत बात क्लिक कर गई कि देखो सही आंसर तो यहाँ मिल रहा है, कि हमारा धर्म जो है शांति है, पवित्रता है, तो इसमें हमको स्थित रहना है। इसमें हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन इससे कोई मतलब ही नहीं है, किसी को भी अपने इसी स्थिति में स्थित रहना। तो ये प्रश्न का जैसे हमें समाधान मिला। और दूसरा परमात्मा के बारे में भी कि परमात्मा निराकार है और भगवान शिव हैं, और इसका अर्थ भी बताया जैसे कल्याणकारी। तो इतना अच्छा समाधान, इतना अच्छा उत्तर पहले ही दिन मिला कि मुझे लगा कि एकदम बिल्कुल ये सत्य ज्ञान है।
जी 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 जी, बहुत अच्छा अनिल भाई। किस तरह के विपरीत परिस्थितियों में बाबा का ज्ञान मिलता है, और ज्ञान की कोई भी बात, एक बात भी अगर तीर लग जाती है तो वो हमारा जीवन बदल जाता है। संजय भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको बाबा का ज्ञान कब मिला, किस रूप में मिला, और कौन सी बात आपको इतना प्रिय लगी जो आप इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने लग गए।
घर में तो हमारे पाठ पूजा और एक छोटा सा मंदिर भी अभी तक भी है, और भक्ति भाव का माहौल रहता था। तो कभी भी हम घर से निकलते थे तो भगवान के पैर छूकर ही निकलते थे कि शिव का मंदिर था, शिव और शंकर दोनों वहां तो एक ही समझते थे। तो जब भी बाहर निकलते थे तो हम लोग थोड़ा सा चरण स्पर्श करके कि हम लोग भगवान के टच में रहें बस
जी।
फिर देवी देवताओं को भी मानते ही थे। हमारे पिताजी बहुत अच्छी शंकर के भक्त भक्ति किया करते थे, आज दिन तक कर रहे हैं। तो जिस प्रकार वो माहौल था तो सम्मान बहुत था देवी देवताओं के प्रति भी। और जब भी दुकान पर भी जाते थे तो आपको मालूम है, दुकान पर जाते हैं तो पहले ही पाठ पूजा करने के बाद ही जल भी चढ़ाते हैं। वो सारा कर्म कांड हमारा भक्ति वाला चलता रहता था
जी।
इसी बीच में नव दुर्गा पूजा शुरू होती है, हर साल आती है नव दुर्गा। तो वहां पर बहनों ने देवी की झांकी लगाई हुई थी, तो हम लोग दुकान बंद करके जैसे ही बाहर निकले, बाजार से बाहर आए, तो देवियों की झांकी लगी थी। तो एक भाई ने कहा कि ये चैतन्य देवियों की झांकी है। तो बताया कि यहाँ जो अच्छी साधना करने वाली बहनें हैं वो देवी बन के बैठती है। तो मैंने बोला कि ये तो अच्छा है, देखना चाहिए ये। फिर हम लोग जैसे ही गए और सामने तीन देवियां बनी हुई थी, कोई दुर्गा बनी थी, एक लक्ष्मी, ऐसे एक सरस्वती। तो हम तब तक उनको देखते रहे, दृष्टि लेते रहे कि जब तक उनकी पलक न झपके कि हम देखें कि ये ओरिजिनल है कि माना मिट्टी की बनी हुई है। माना लगता तो ऐसे ही था कि मूर्ति है, लेकिन वो चैतन्य थी। तो जैसे ही उन्होंने पलक झपका तो उसके बाद फिर हम समझ गए कि ये
चैतन्य
योगी साधना किए हुए बैठे हुए हैं। फिर वहां से एक भाई ने कहा कि चलो हम प्रदर्शनी दिखाते हैं। तो एक एक मिनट ही हर एक चित्र पर समझाने लगे। तो सृष्टि चक्र पर जैसे कि थोड़ा समय रुक गया, तो वो सृष्टि चक्र मेरे को बहुत आकर्षित करने लगा
जी।
कि ये हूबहू घूमता है, और अभी समय पूरा होने वाला है, जो काटा भी दिखाते हैं उसमें कि 12 बजने वाले हैं। तो ये सारा चित्र देख लिया। फिर उसके बाद हमको कहा कि कोर्स के लिए आपको आना है। तो हमने कहा कि अभी तो मार्केट अभी उठाई है, तो हम करीब एक हफ्ते के बाद जरूर आएंगे। बस ऐसा चलता रहा। फिर 2-3 दिन के बाद ही हमारे परिवार ने बोला कि आपको एक जगह चलना है। तो भनक तो लग गई थी भाई, किस लिए ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अभी हम सगाई करा देंगे, फिर 2-3 साल के बाद आपकी शादी होगी। तो मैंने कहा कि अभी मेरे को नहीं करना है, मेरे को तो बिजनेस करना है। बोले नहीं नहीं अभी शादी थोड़ी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उन्होंने आखिर मेरे को तैयार कर दिया। फिर हम गए और सगाई हो गई मेरी। और जैसे ही हम लौट के आ रहे हैं तो मेरे को सृष्टि चक्र इतना बड़ा दिख रहा है पूरा आकाश में, और यही आकाशवाणी हो रही है कि तुम गलत करके आए हो, तुम्हें ये तुम्हारा काम नहीं था ये सब करना। बार बार वो आकाशवाणी हो रही जैसे
जी।
और सृष्टि चक्र बहुत बड़ा घूम रहा है मेरे सामने कि अभी समय कम है, ये सब करने का समय नहीं है अभी
जी।
वो घूमता रहा, परिवार वाले तो सब खुश थे, घर पर आ गए। फिर दूसरे दिन मैंने ढूंढना चालू कर दिया कि किस जगह उन्होंने बोला था वहां जाना है,
ब्रह्मा कुमारी।
हाँ
जी।
तो जैसे ही हम गए वहां एक भाई मिला, फिर उन्होंने भी प्रदर्शनी समझाई, तो सृष्टि चक्र फिर से आ गया वहां। फिर उसके बाद कैसी दुनिया आने वाली, वो स्वर्ग का मॉडल था तो वो बहुत खींच रहा था
जी।
फिर उसके बाद भाई ने सारा समझाया, बोला इसका एक एक घंटे का कोर्स होता है और आप आओ बहन जी के पास नाम लिखा दो। तो नाम लिखाने से पहले उन्होंने कहा कि बाबा के कमरे में बैठ जाओ। बस वहां जैसे ही मैं बाबा के कमरे में बैठा, बाबा से दृष्टि मिलन हुआ और एक घंटे तक जैसे कि मैं वहां बैठा रहा, बाबा से बातें शुरू हो गई। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब तुम्हारी यात्रा, अब तुम मेरे पास आ गए हो, बस अब निश्चिंत रहो। तो दृष्टि से जैसे कि बाबा ने मेरे को जन्म दे दिया
जी।
तो फिर उसके बाद
आपका उस समय तक 7 दिन का कोर्स नहीं हुआ था?
नहीं हुआ
जी। तो जैसे आप बता रहे हैं संजय भाई कि एक तरफ ज्ञान का प्रारंभ और दूसरी तरफ माया का प्रारंभ, दोनों एक साथ, एक तरफ ईश्वरीय ज्ञान प्रारंभ हुआ था, बाबा से सगाई होने वाली थी और लौकिक सगाई हो गई। तो आगे आपसे और जानेंगे कि किस तरह की इस परीक्षा से आप पार हुए, लेकिन सचमुच हमने देखा है बाबा के बच्चों के सामने इस तरह की परीक्षाएं आती है ज्यादातर। जब हम ज्ञान में आते हैं और ज्ञान में आते ही कई बार परीक्षा भी आना शुरू हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अनिल भाई, जैसे संजय भाई बता रहे हैं उनके सामने तो काफी बड़ी परीक्षा आ गई, इतनी बड़ी परीक्षा और उसे कैसे पार किए होंगे वो आगे सुनेंगे। आप जब ज्ञान में आए, बाबा के ज्ञान में, तो आपके परिवार के तरफ से, जैसे हम ज्ञान में आते ही खान पान का शुद्धता अपना लेते हैं और हमारा दिनचर्या चेंज हो जाता है, सुबह उठने लग जाते हैं, कई बार घर वालों के तरफ से विरोध होता है, कभी समाज वालों के तरफ से विरोध होता है, पड़ोसियों की तरफ से विरोध होता है, ये कहाँ चलने लगा, ओम शांति में जाने लग गया, आपके सामने इस तरह की कोई परीक्षा आई हो तो सुनाएंगे अनिल भाई?
मेरे सामने ऐसे कोई परीक्षा नहीं आई
जी,
क्योंकि चूंकि धार्मिक परिवार था।
हाँ।
तो कोई मना भी करना चाहते थे तो उन्हें डर लगता था कि भगवान के कार्य में अगर हम विघ्न डालेंगे
जी,
तो मुश्किल होगा, इसलिए खुल के कोई बोल नहीं पाते थे, थोड़ा मड़ा इशारा मिलता था।
हाँ।
लेकिन हम लोग उस समय चूंकि पढ़ाई का समय था तो फिर दूसरी बातें कोई आती ही नहीं थी कि अभी तो पढ़ाई चल रही है
जी। उस समय तो इस तरह की कोई परीक्षा नहीं आई, आप भाग्यशाली हैं। संजय भाई मैं आपसे थोड़ा और इसे, जब आपने छेड़ी दिया ये क्रम, तो और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ फिर, आपने जो सगाई हो गई थी उसको आपने कैसे फेस किया, कैसे पार किए, और क्या उनके तरफ से किस तरह का विरोध हुआ और आपके परिवार की तरफ से कैसा विरोध हुआ, कैसे आप वो सब छोड़ करके बाबा के ज्ञान में आगे बढ़े, थोड़ा सा हमारे भाई बहनों को उसके बारे में दृश्य दिखाइए।
तो जैसे ही बाबा से दृष्टि मिलन हुआ, उसके बाद बहने एक बहन आई, कहती है कि आपका कोर्स होगा, अभी बाबा के रूम में नहीं बैठना है, पहले आप बाबा को समझ जाओ, अपने आप को समझो, फिर आपको मेडिटेशन करना है। तो पहले दिन का कोर्स शुरू हुआ, उससे हमको जो टाइम दिया था हम लोग पहले ही पहुंच जाते थे और आते ही हम बाबा कमरे में बैठ जाते थे, क्योंकि बाबा के कमरे में जो खींच होती थी वो माना जन्म जो योग से हुआ, दृष्टि से हुआ, तो वो बहुत खींचता था, बाबा की तस्वीर, बाबा की आंखें बहुत खींचती थी और आंखों से जैसे पानी बरस ही रहा है
जी।
बाबा से दृष्टि लेते लेते फिर भी बहनें तो अपना कार्य करेंगी कि वो कोर्स कराने लगी। 5-6 दिन के बाद मैं बाबा के कमरे में ही बैठा था तो एक भाई मेरे पीछे भी बैठा हुआ था, उसने देख लिया कि हाँ ये भाई भी बैठा हुआ है। फिर जैसे ही वो उठे मैं भी उनके पीछे पीछे उठा। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा और क्या आगे बढ़ने के लिए और क्या करना पड़ता है। तो उस भाई ने सारी धारणाएं सुना दी कि यहाँ तो आते हैं तो ये नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, और सारी धारणाएं वो बताने लगे। और वो बता भी रहे हैं और बहन जी उधर सुन रही है, और वो बहन जी बोल रही थी कि मैं तो यही समझ रही हूँ कि अब कल से ये आएगा ही नहीं, इसको सब कुछ बता दिया है कि यहाँ क्या छोड़ना है क्या खाना है। और उधर बहन जी ऊपर नीचे हो रहे थे कि पता नहीं अब ये कल से आएगा कि नहीं।
जी 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 जी।
तो जैसे ही हमको धारणा पता चली उसी दिन से हमारा वो पक्का हो गया। उसी दिन रात को हम घर गए और भोजन बना था तो उसी दिन हमने यही बोल दिया कि आज से हमको ये वाला भोजन नहीं करना है। फिर उनको पता चल रहा था कि ये वहां जा रहा है तो अपना व्यवहार और बातचीत इसकी चेंज होते जा रही है। गीत भी जो हम फिल्मी गीत सुनते थे वो सब हट गया और बाबा की कैसेट लाना शुरू कर दिए। घर में वही गीत बज रहे हैं सुबह शाम वही। और धीरे धीरे पूरे समाज में जैसे कि पता चलने लगा कि ये वहां जा रहा है और ये शादी नहीं करेगा। सब लोग यही एक दूसरे को बताते रहे, परिवार में भी बात पता चल गई। फिर उसके बाद परिवार वालों ने कहा कि वहां आपको जाना नहीं है, आप कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये अभी उम्र नहीं है तुम्हारे जाने की, और इसको आगे जब बड़े हो जाओगे ना तब चले जाना वहां,
आश्रम नहीं जाना,
आश्रम में। तो ये बातें होने लगी। मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा। फिर बहन जी से बात किया कि अब खाना कैसे करना है, तो कहा कि माता जी को बोलो वो बनाएंगी बिना प्याज लहसुन वाला। तो अब उसके लिए युक्ति क्या करनी है, तो वो बहन जी ने ही बताया कि कहना कि 6 महीना के लिए डॉक्टर ने मना किया है प्याज लहसुन खाने के लिए। जैसे ही मैंने ये बोला तो वो बोले ठीक है, वो बनाने लगे। फिर भी आस पड़ोस के लोग बोलते रहते थे कि ये वहां जा रहा है ना, ये वहां वेल खाते नहीं है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो फिर उन लोगों ने कहीं बात की होगी कि इनको वहां से छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर उनको कुछ बताया गया कि ऐसा ऐसा करो, यहाँ खाने में ये मिला के दे दो। तो वो खाने में कुछ ना कुछ मिलाते थे, और मैं जैसे टिफिन लेके सेंटर में पहुंचता था तो बाबा के कमरे में टिफिन रख देता था। उसके बाद मुरली सुन के फिर टिफिन लेके हम अपने दुकान पर जाते थे। तो जिस दिन वो लोग मिलाते थे उस दिन भूख नहीं लगता था सारा दिन, और टिफिन ऐसे ही वापस चला जाता था। तो वो लोग समझते थे कि इसको ध्यान में सब दिख जाता है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। फिर उसके बाद कुछ दिन चलता रहा। अमृत वेला बहन जी ने कहा कि अगर अमृत वेला करोगे तो तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे
जी।
तो उनको मालूम था कि इसका एक ही ये बंधन है। और मैंने बोला मेरे को बाबा का ही बन के रहना है, मेरे को शादी करना ही नहीं है।
हाँ।
मैंने अंदर ठान लिया था। फिर ओम प्रकाश भाई जी भी एक बार आए तो उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा कि जो तुम चाहते हो वही होगा, बस दृढ़ रहना उसमें
जी।
फिर भाई जी ने कहा कि देखो संजय मैं एक ही बात बताऊंगा, ये कल्प कल्प की बाजी है, अगर इस कल्प आप हार गए तो हर कल्प हार खाओगे। तो वो बात मेरे को ऐसी लग गई कि ये कल्प कल्प की बाजी है और इसे मुझे जीतना ही है
जी।
और योग एकदम पावरफुल होने लगा, बाबा से ऐसी बातें होने लगी कि बाबा जैसे हम साकार में हैं ऐसे अंग संग बाबा बात कर रहे हैं। जो मैं बाबा से पूछता हूँ तुरंत उत्तर आता है। फिर थोड़ा समय हुआ तो समझाने के लिए आ गए कुछ लोग कि तुम वहां जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है उन लोगों ने, ऐसा हो गया है वैसा, तुम्हारे अंदर ब्रह्मा कुमारियों का भूत घुस गया है, उसको निकलवाना है। मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चलना है तो हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, सीधा मना करते थे
जी।
दूर से ही। फिर बीच में ऐसा कुछ हुआ तो हमको एक तांत्रिक के पास ले जाना चाहते थे, तो मुझे पता चल गया कि ये लोग वहाँ ले जा रहे हैं। फिर मैंने बाबा से बात की
जी।
कि बाबा ये लोग मेरे को वहाँ ले जाना चाहते हैं, तो जाऊं कि नहीं जाऊं। तो बाबा की जैसे आवाज आ रही है कि बच्चे जाओ और उनको दिखा दो तुम्हारे साथ कौन है। बस बाबा की छुट्टी मिल जाती थी, हम उनके साथ चले जाते थे। जैसे ही हम उनके चौखट में पैर रखते हैं
जी।
और दृष्टि मिलन होता है, तुरंत वो आंख ऐसे नीचे कर देते हैं, बोलते ले जाओ इस लड़के को, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा करके वहाँ जल्दी से जल्दी वो अपने वहां से निकालना चाहते थे, क्योंकि जहां मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है वहां संसार की सभी शक्तियां अपने आप नष्ट हो जाती है, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है
जी।
तो ऐसे यात्रा चलती रही
जी 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 जी। तो इस तरह से आपका वो पुराना जो सगाई हुआ था वो कैंसिल हो गया फिर?
हाँ, अभी तो बाकी है पिक्चर।
अच्छा, पिक्चर बाकी है। ठीक है ठीक है, और सुनेंगे।
चलता रहा
जी 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 जी। तो सचमुच ये बाबा की मदद हम सबको मिलती है, जैसे संजय भाई सुना रहे हैं ज्ञान में आने के बाद कैसे बाबा ने इनको मदद किया। और बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं कि तांत्रिक को भी ये आभास होता था इनके साथ कोई ईश्वरीय शक्ति है, और वो अपना प्रयोग कुछ नहीं कर पाते थे। मैं अनिल भाई आपसे जानना चाहता हूँ कि हम ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद हम सब का एक जीवन का लक्ष्य रहता है कि हम मधुबन जाएं, क्योंकि जैसे ही ज्ञान में चलते चलते थोड़े दिन ही हुआ रहता है, और उसके बाद जब मधुबन के बारे में सुनते हैं तो मधुबन के प्रति आकर्षण सब भी ब्राह्मणों का रहता है। आपका मधुबन पहली बार कब आना हुआ और कौन से वर्ष में आए? पहली बार जब आए तो क्या बाबा मिलन के लिए आए या सेवा में आए, और प्रथम बार क्या अनुभूति हुई मधुबन का, वो आपसे हम सुनना चाहते हैं।
ऐसे तो हम मधुबन के टच में रहने लगे थे ज्ञान के बाद, लेकिन बाबा से मिलने के लिए ऑफिशियली हम 1992 में आए थे यहाँ, और उस समय ये ज्ञान सरोवर की जमीन ली हुई थी। तो दादी और हम सभी लोग उस समय तो आते थे यहाँ, तो हम लोग ये जमीन देखने आए थे कि यहाँ पर ज्ञान सरोवर बनेगा। और हम लोग फिर जमीन देखा था हम लोगों ने उस समय, अभी तो कुछ भी पहचान में नहीं आता। उस समय हम लोगों ने कहाँ क्या देखा था,
जंगल था,
जंगल पूरी तरह से। और हम तो 92 में हमने मुरली सुनी थी, वो मुरली याद रहती है, दुआएं दो और दुआएं लो, 30 नवंबर की मुरली थी। और वो उस समय राम जन्मभूमि का अयोध्या में चल रहा था, तो इसलिए बल्कि जिस ट्रेन में हम लोग वापस जा रहे थे उसी में कार सेवक भी जा रहे थे अयोध्या, और उसके 4-5 दिन बाद तो वो विध्वंस हुआ था उधर। तो इस प्रकार जब हम लोग मधुबन में पहली बार आए और मधुबन की अनुभूति, तो उस समय तो मधुबन केवल पांडवों ने था, पांडवों ने आते थे। तो जब भी कोई पांडव वन से उस समय निकलता था तो हर एक की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते थे, जब बस चलती थी तो किसी को भी जाने का दिल नहीं करता था। और आने के बाद भी मधुबन में हम लोग जब पहली बार आए तो ऐसा नहीं लगता था कि हम कोई नई जगह आए, ऐसा लगता था जैसे हम यहीं रहते हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, बिल्कुल न्यूनेस नहीं था। तो ये जो बाबा की फीलिंग, और हमने देखा कि हम जब मधुबन में आए तो उसी समय हमने एक अपने संकल्प रखा कि जब भगवान की पालना हम ले रहे हैं, भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई भी समाधान बाबा से ही लेना है, कोई भी बात बाबा से हम करनी है, किसी देहधारी को आधार नहीं बनाना है। हाँ, सबको रिस्पेक्ट देना है और सम्मान देना है। तो मधुबन में आने से हम स्पष्ट रूप से हम फील करते थे कि बाबा के जैसे, जैसे साकार में हम देखते हैं, हमें तो कहेंगे साकार से भी ज्यादा हमें क्लोज्ड जो अलौकिक पाला।
मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ अनिल भाई कि पहली बार जब पांडव भवन में कदम रखे होंगे और वो एक मधुबन की फीलिंग आई होगी, कैसा बाबा का घर है और उस समय की क्या दिनचर्या, दादियां कैसे मिली और किस तरह के, क्योंकि उस समय इतना परिवार इतना बड़ा नहीं था 92 में, और बाबा के आगमन से पहले किस तरह तैयारी चलती थी, वो थोड़ा सा फीलिंग आपसे आपका मैं जानना चाहता हूँ। मधुबन का पहला पहला वो अंदर प्रवेश करना और इतना शांत वातावरण, दादियों का वो किस तरह की प्यार और पालना मिलती थी, थोड़ा सा वो शुरुआत का और बताइए।
शुरू में हम लोग जब आबू रोड से हम लोग ट्रेन से उतरे, तो उस समय कुछ भाई बहने भाई यहाँ से मधुबन से भाई भी जाते थे जो रिसीव करते थे
जी।
तो सामान रखवाने में भी, लाने में भी या उतारने में भी, तो ऐसा लगता था जैसे कोई पारिवारिक सदस्य आता है ना किसी को रिसीव करने, तो ऐसा लगता था कि जैसे मधुबन ही आ गया है हमें लेने के लिए। तो एक तो वहीं से अनुभूति होने लगती थी कि जैसे हम, और फिर जब यहाँ भी आओ तो सामान उतारने के लिए भी, हेल्प करने के लिए। और जब उस समय तो ऐसी अनुभूति थी बाबा के रूम में जाने के बाद, तो फिर जो कोई शब्द हम सोचते थे कि बाबा से ये रोजान करेंगे, उस समय ऐसी कोई बात ही नहीं थी। बाबा के रूम में गए आपको जैसे इतनी भरपूरता की अनुभूति, जैसे कोई संकल्प भी चलाने की ये भावना। और वो रियली उस समय तो ऐसी अनुभूति होती थी कि जैसे कि हम जमीन पर नहीं है, जैसे उड़ रहे हैं। हर एक की अनुभूति थी आपस में हम सभी, और हम सभी कुमार थे उस समय, क्योंकि उस समय हम लोगों की लौकिक स्टडी भी थी, तो सभी हम लोग हॉस्टल में रहते थे सभी बच्चे, तो इसीलिए जो भी कुमार एक साथ आए, एक साथ ही चलना एक साथ, तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा अलग ही रहते थे लौकिक से भी, तो इसलिए बाबा की अनुभूति और तीव्र गति से होती रही, क्योंकि एक ही तरफ झुकाव था बाबा की तरफ।
जी 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 जी, बहुत अच्छा। सचमुच ये हम सबके लिए प्रथम बार जब हम मधुबन आते हैं तो वो जो छवि हमारे अंदर अमिट छाप बन जाती है, चाहे हम पांडव भवन के प्रांगण के अंदर प्रवेश करें, चाहे प्रथम बार दादियों को देखें, चाहे प्रथम बार हम बाप दादा से मिलन मनाएं, वो सचमुच अपने जीवन के लिए अविस्मरणीय पल होते हैं। संजय भाई, आपके सामने तो बस एक सुनने की जिज्ञासा है कि किस तरह की इतनी बड़ी परीक्षा आपके सामने आई कि एक तरफ बाबा का प्यार खींच रहा था और दूसरे तरफ लौकिक परिवार का बंधन, फिर जैसे आपने बताया कि वो उसी समय आपकी सगाई हो गई थी, तो ये परीक्षा से आखिर कैसे गुजरे आप, कैसे वो सब बंधन को तोड़े, कैसे सबको कन्विंस किए, और क्या क्या परीक्षाएं आपके सामने उस समय आई?
जैसे ही हम ज्ञान योग में आगे बढ़ने लगे, बाबा की अनुभूति तो हर पल की होने लगी और याद इतनी सहज हो गई कि बाबा मेरे अंग संग कंबाइंड स्वरूप जैसे होता है, तो जहां भी हम जा रहे हैं बाबा से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार हम दुकान खोल रहे हैं और कई लोग चंदा लेने वाले लोग भी आ जाते हैं कि आज ये है आज वो है, तो बाबा से मैं बात करके माना ऐसी बात कर लेता था कि बाबा यदि आपकी भंडारी से इनको कुछ देना है तो ही ये हमारे दुकान में आए, वरना ये आए ही नहीं। तो कई ऐसे चंदे वाले लोग यहाँ डोनेशन लेने वाले लोग आते थे लेकिन मेरे पास नहीं आ पाते थे।
अच्छा।
वो दुकान उनको शायद दिखाई नहीं देती थी या क्या होता था, क्योंकि मैं अंदर से सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया था, तो अब बाबा की जिम्मेवारी हो गई थी मेरे को संभालना। और दुकान पर भी जैसे कास्केट और सारा दिन बाबा की स्मृति में रहना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसको दृष्टि देना, तो ऐसा चलते चलते ही जैसे ही समाज में पता चला तो कुछ लोग फिर मेरे को समझाने भी आए, तो अलग अलग रीति से उनके समझाने का था कि कोई पहलवान भी आ रहा है, तो एक बार ऐसे ही एक आ गया पहलवान कि हो सकता है ये हमें से डर के हाँ कर देगी शादी करेगा, तो जैसे ही वो आया और उनके साथ एक बुजुर्ग भी आए थे, उन्होंने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं होता है, अभी तो तुम्हारी बहुत उम्र पड़ी है, तुम ये निर्णय मत लो। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो अब मैंने ले लिया निर्णय, मैं आजीवन ही बाबा का बन के ही रहूंगा। तो जो पहलवान होता था बाजू में वो ऐसे ऐसे करता था, ताकि वो यहाँ हाँ कर दे। तो जैसे ही उनकी भी दृष्टि मिली ना, दृष्टि जैसे ही मिली उसने भी सिर को ऐसे नीचे किया, उसके बाद तो अभी तक वो दिखाई ही नहीं दिया वो भाई। तो ऐसे कई बाबा की मदद अनुभव होने लगी। फिर उन्होंने काफी समझाया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी इस मार्ग पे चल रहा हूँ तो मैं उधर नहीं जा सकता
जी।
तो उन्होंने कहा जो बीच में कराने वाला होता है
दलाल,
हाँ, तो जो सगाई कराने वाला था उनका फोन आ गया मेरे पास। बोला देखो तुम बहुत ज्यादा उस तरफ जा रहे हो, अगर तुमको पूरा ही जाना है तो उनको खुद ही मना कर दो। बीच वाले ने ऐसा कहा। तो मैंने कहा ठीक है मना कर देता हूँ। तो बोले ये वाला नंबर मैं दे रहा हूँ, यहाँ करो, वो बैठे हैं, उनसे बात कर लो।
बस जहाँ आपकी सगाई हुई थी उस पक्ष में। अच्छा,
बस फिर मैंने फोन घुमाया, उनको कहा कि देखो मैं आपको भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता कि मैं नहीं करूँगा शादी
जी।
ये सुनते ही उनको बोला, उनको लगा कि नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो, हम आएंगे बात करेंगे और जो भी आपको चाहिए, गाड़ी भी चाहिए तो ऐसा कुछ कुछ ऑफर कर होता है ना ऐसा कि कहीं इसके लिए। मैं बोला नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो पाना था वो पा लिया है
जी,
अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। ये संकल्प उनको मैंने भेज दिया। और फिर मेरे को ऐसा टचिंग आ रहा है कि मैंने इनको बोल तो दिया है, अब मेरी पिटाई शुरू होने वाली होगी।
अच्छा,
तो क्योंकि परिवार बहुत बड़ा परिवार है, सब मिलके रहते थे
जी।
तो ये रहता था कि बस जैसे ही हमारे परिवार में पता चलेगा तो वो लोग
विरोध करेंगे
अच्छे से। फिर बहन जी को भी मैंने फोन करके बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा बोल दिया हूँ, अब क्या करूँ, घर जाऊंगा तो मेरी खैर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अंदर ना बाबा बाबा, सिर्फ बाबा बाबा ही करते रहो और कुछ मत संकल्प करो, वही बचाएगा। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ तो बाबा को कहा कि बाबा अब मैं थोड़ा समय परमधाम में बैठता हूँ, अब नीचे का आप संभाल लेना। तो बस उसी समय जैसे परमधाम मेरे लिए खुल गया और बाबा की वो स्मृति परमधाम वाली वो इमर्ज हो गई पूरी तरह से। और बस फिर जैसे ही मैं घर गया तो बस किससे पूछ के फोन किया, धड़क इधर से फिर इधर से फिर उधर से। तो मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं माना शरीर से डिटैच हूँ उस समय
जी, जी 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 जी।
तो बहुत ऐसे पकड़ के समझाया गया, ये किया गया, बोला तुमने तो हमारी इंसल्ट करा दी सब कुछ। तो बोला अब निकल जाए यहाँ घर से। फिर मैं रात को लगभग 11 बज रहे थे तो घर से बाहर गया, पैदल ही जा रहा था। फिर वो लोग लेने आ गए स्कूटर में, बोले तू जाएगा कहाँ, तेरे को तो करनी ही पड़ेगी। फिर बिठाया स्कूटर में, बोला चलो घर। फिर वहां से 11 बजे 11:15 लगभग हम लोग सेंटर पहुंचे। वो लोग ले गए सेंटर में, बोला कि चलो कौन सा ऐसा सेंटर है, कौन से आश्रम वाले ये सब बोलते हैं। मैं बोला वो लोग बोलते ही नहीं है, ये तो मेरा निर्णय है खुद का
जी।
तो फिर भी वो लोग ले गए रात को 11 बजे आश्रम में, सेंटर पर ले गए। तो बहने दरवाजा भी नहीं खोल रही, खिड़की से ही बात कर रही, क्योंकि इधर से 10-12 लोग थे हम लोग। तो कहा कि नहीं नहीं हम लोग तो मना ही नहीं करते हैं, वो तो इसकी खुद की मर्जी है। तो मैं बोला देखो यही बोल रहे ना ये लोग भी। और फिर वो लोग आ गए घर पे, फिर उनको लगा ना किसी और को दिखाना चाहिए
जी,
माना किसी बड़े के पास जाना चाहिए, वो इनको ठीक कर सकता है। तो उन लोगों ने सलाह की कि एक जगह है जहाँ एक सोल आती है और वो समाधान करती है सबका,
तांत्रिक के पास।
हाँ, तो मेरे को बोला कि अब कल सुबह वहाँ चलना है, वो 400 किलोमीटर दूर था
जी।
तो फिर मैंने बाबा से पूछा कि ये लोग ना वहाँ ले जाना चाहते हैं ऐसा ऐसा है, ऐसी जगह में। तो बाबा ने बोला जाओ वहाँ भी दिखा देना तुम्हारे साथ कौन है। फिर हम गए वहाँ, तो 6 बजे से 8 बजे तक उनका प्रोग्राम चलता है।
अच्छा,
तो जैसे उनके चौखट पर कदम रखा, अब वो जिनके में सोल आती वो माता ऐसे ऐसे घूम रही है और उनके सामने मेरे को बिठा दिया। और वो ऐसे पूछने लगे शादी क्यों नहीं कर रहा है। मैं बोला भगवान की आज्ञा है पवित्र रहना है।
अच्छा
राम ने भी तो की थी, कृष्ण ने भी तो की थी, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल सुनाने लगी वो सोल अलग अलग, तेरे को तो करनी पड़ेगी। अच्छा। मैं बोला मैं नहीं करूंगा, भगवान की आज्ञा है। भगवान कौन है ऐसा करके ना मेरे को मानव बाल हटा के ऐसे देखी ना, दृष्टि मिलाई। मैं बोला भगवान एक ही है, वो आ गया इस धरती पर। दृष्टि देते देते मैं उसको परिचय देने लगा, उसने थोड़ी देर बाद ऐसे सिर किया, बोला इसको ले जाओ इसको, ये बिल्कुल ठीक है। वहां से भी फिर हम लोग आ गए। तो फिर यही रहा कि नहीं मैं अपने में दृढ़ हूं। कई तरफ से पेपर आए, फिर उनको पता चला कि भाई ये लड़का अब इस मार्ग पर चल पड़ा है, ये वापस नहीं आएगा, उनको ये कंफर्म हो गया।
जी 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 जी, बहुत अच्छा संजय भाई का बहुत प्यारा अनुभव, किस तरह की ईश्वरीय बचपन में ही इतनी बड़ी परीक्षा को आपने पार किया। और अगर आपकी परीक्षा को पूरा सार रूप में अगर हम देखें तो आपने हर पल बाबा को साथी बना करके रखा और बाबा ही आपको साथ देकर आपको इतनी बड़ी परीक्षा पर विजय प्राप्त कराया। अब आगे आपसे सुनेंगे संजय भाई किस तरह की आपकी जीवन की यात्रा और आगे बढ़ी। अनिल भाई मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं कि जैसे हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं, खास करके कुमारों का एक ही लक्ष्य रहता है कि अब बाबा के घर में हम समर्पित हो जाएं, अपना जीवन हम बाबा को अर्पित कर दें। आपके मन में ऐसा संकल्प कब आया और आपने समर्पित होने का फैसला जब किया तो उस समय भी किसी प्रकार का विरोध हुआ या कोई विरोध नहीं हुआ, आप डायरेक्ट समर्पित हो गए? लेकिन समर्पित होने के का संकल्प आपको कैसे आया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है जीवन में, संगम युग में अपने जीवन को भगवान के ऊपर अर्पित कर देना, ये इस तरह के संकल्प आना भी बाबा की वरदानी दृष्टि के ऊपर ही होती है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये समर्पित होने का संकल्प कैसे आया और आप समर्पित कौन से वर्ष में हुए?
ऐसे तो बचपन से ही हमको ऐसा संकल्प रहता था जैसे हम कहीं आश्रम में या कहीं तीर्थ स्थानों पर रहेंगे, लौकिक परिवार में रहने की कोई हमको बचपन से ही ऐसी भावना नहीं थी। और जबकि हम एक ही भाई थे, एक लड़का और एक बहन थी मेरी लौकिक, फिर भी मेरी लौकिक माँ जो है उस समय भी, पहले भी जब हम ज्ञान में नहीं आए तो उसके पूर्व भी वो कहती थी कि भले आपको छुट्टी होगी, वो बहुत खुश रहती थी कि आप जाएंगे। तो चूंकि धार्मिक परिवार था इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब हम ज्ञान में आए और यहाँ मधुबन एक बार हम आए यहाँ, और उस समय यहाँ ज्ञान सरोवर का निर्माण चल रहा था, तो इसलिए बड़ी दादी जो दादी प्रकाशमणि है उनके तरफ से ये जाता था लेटर कि यहाँ बहुत भाइयों की जरूरत है सेवा के लिए। तो हम लोग सभी कुमार होते थे हम लोग, और हॉस्टल में रहते थे और पढ़ते थे, तो देखते थे कि ये भाई चला गया मधुबन, अभी ये चला गया, इतना एक उसमें रेस हो जाती थी कि हम भी चले जाएं ऐसे करके, तो बहुत जैसे रेस जैसी हो जाती थी। ये तो कुछ बस ये कोई फीलिंग नहीं आती थी लौकिक घर और ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं, केवल हम लोग आपस में ही रेस हो जाती थी
जी, जाना
है मधुबन। और चूंकि मधुबन हम लोग यहाँ एक बार आ चुके थे ना, तो आने के बाद जैसे दिन रात भले हम लोग वहां रहते थे लेकिन जैसे तन वहाँ है मन यहाँ रहता था। और ये बात ऐसे कनेक्टेड नहीं है लेकिन दो बातें हम बताना चाहेंगे कि उस समय जब कई बातें जो है हमें सेंटर पर भी ये उस तरह से नहीं बताते हैं कोई, तो एक बार यहाँ कुमारों का क्लास था पांडव वन में, तो दादी प्रकाशमणि ने पूछा था उसमें कि मान लो आपकी टीचर बहन कहती है कि 20 लीटर केरोसिन ऑयल है उसको गिरा दो तो क्या करोगे आप? तो कोई भाई ने कहा कि हम गिरा देंगे, किसी ने कहा हम नहीं गिराएंगे, सबने भिन्न भिन्न आंसर दिया। फिर दादी ने कहा नहीं गिरा देना चाहिए।
अच्छा
दादी ने कहा वो केरोसिन ऑयल जो है टीचर बहन के जो है ना जो टीचर बहन ने जो आपको आदेश दिया है उससे बढ़कर के केरोसिन ऑयल नहीं है। केरोसिन ऑयल आ जाएगा नेक बहुत ज्यादा आ जाएगा लेकिन जो आपका संबंध एक बार बिगड़ गया वो बनाना इतना सहज नहीं होगा। तो एक चीज तो हम लोगों को बहुत सीखने को मिला था यहाँ। और दूसरी बात यहाँ जब हम मधुबन में भी आए थे तो एक बार हम दादी थी दादी प्रकाश मणि तो हम एक जगह सेवा कर रहे थे जैसे ये सेवा है हमको जैसे यहाँ का सेवा दे दिया तो हम इधर कर रहे हैं और हम क्या सोचते हैं कि हमारी सेवा यहाँ है इसलिए यहाँ बिजी है यहाँ आसपास में क्या हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है तो इसलिए हम इधर अपना बिजी है इधर कुछ भी हो रहा है। तो दादी आई तो दादी ने कहा इधर तो बहुत क्लीन है बहुत अच्छा है इधर क्यों नहीं है। तो दादी के साथ मुन्नी दीदी भी थी उस समय जयंती दीदी भी थी तो मुन्नी दीदी ने कहा दादी इसकी सेवा इधर है इसलिए ये यहाँ देख। तो दादी ने कहा नहीं ये कभी नहीं सोचना मेरी सेवा यहाँ जहाँ भी रहना वहाँ बेहद में रहना। तो कुछ बातें तो इतनी दादी की क्लिक कर जाती थी तो इसलिए हम लोग वहाँ जैसे हमने कहा कि एकदम खींच होती थी मधुबन से जाने के बाद ना जैसे एक पल को दिल नहीं लगता था हम लोगों को लगता था कि कब जाएं बिल्कुल खींच जबरदस्त खींच होती थी रुकना मुश्किल होता था जब भी देखें। तो इसके बाद हम 95 में यहाँ आ गए मधुबन उसके पहले भी एक आए थे शिवरात्रि में और 95 में आके हम रहने लगे लेकिन फिर एक हमारे साथ ही एक भाई आए थे अभी वो आए हुए हैं इस पार्क में सेवा है उनकी रामाश्रय तिवारी तो उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ तो इसलिए उनको हम उनको लौकिक घर में लेके जाना पड़ा हमको छोड़ने तो उनको छोड़ करके फिर हम फिर 1 मंथ लग गए थे फिर हम आके 96 जनवरी में आके समर्पित हुए पूरी तरह से।
तो इस तरह से आपकी ये समर्पित जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई 95-96 से और सचमुच आप भाग्यशाली हैं अनिल भाई की समर्पित जीवन बिताते समय भी आपको किसी प्रकार को कोई परीक्षा नहीं आई नहीं तो फिर कई बार लौकिक परिवार या समाज के तरफ से बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि माँ बाप के अकेला लड़का होते हुए भी आपके लौकिक माँ ने सहयोग दिया और आप बाबा घर में सहज रूप से समर्पित हो गए। संजय भाई आपके सामने तो एक परीक्षाओं की पहाड़ आई और ये सब को आपने पार किया। पहली बार आप मधुबन कौन से वर्ष में आए और मधुबन की पहली बार की यात्रा का कुछ अनुभव हमारे भाई बहनों को सुनाइए।
तो जो विघ्न था मेरे पास वो धीरे धीरे जैसे कि छटने लगा और सभी ने मान लिया कि ये अपने मार्ग पर ही चलेगा तो फिर सबने ये डिसाइड किया और बीच में एक बार ऐसा भी हो गया था कि परिवार में ही वो मेरे को तो छुड़ाना ही चाहते थे कि ये आश्रम न जाए तो किसी ने उनको कुछ बना के दिया होगा कि ये आप उनके तकिए में डाल दो अंदर ताकि उसका माइंड चेंज हो जाए। तो ये मुझे तो पता नहीं था और पता तो बाबा को ही था कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है
जी।
तो जैसे ही मैं रात को घर पहुंचा और सोने के लिए जैसे ही हम जा रहे हैं तो संकल्प आ गया कि बाबा के गीत सुन के ही सोते थे जैसे ही हम बैठे योग में और बाबा से बातचीत चल रही है कि बाबा जो कुछ भी मेरे पास है ये सब आप ले लो बुद्धि को खाली करके सोना है तो वो प्रैक्टिस मैं कर रहा था कि बाबा सब ले लो और मुझे बाबा की गोद में ही सोना है। तो फिर जैसे ही मैंने तकिया देखा पीछे तो मैंने कहा आज तो इसको हटा ही देते हैं आज तो बाबा की गोद में ही सोना है।
अच्छा
तो फिर बाद में पता चलता है कि उस तकिए में भी कुछ डाला हुआ था तो बाबा की मदद
जी।
हर कदम पर मिलती रही फिर सबको यही फाइनल हो गया कि ये अब पूरी तरह से इस मार्ग पर चलेगा तो सारा उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम भी अब आ रहे हैं तो आपने जो सगाई की है उसको हम अभी तोड़ देंगे। तो फिर वो लोग आए अपना वकील भी साथ लाए थे
अच्छा
ताकि इससे साइन करा लेंगे कि आजीवन विवाह नहीं करेगा। मैंने कहा मुझे तो मंजूर है तो फिर गए सब वो लोग और हम लोग दोनों परिवार एक जगह मिले, फिर वहाँ बातचीत हुई और वहाँ जैसे कि फाइनल हो गया कि सगाई टूट गई
जी।
और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत बड़े एक पिंजरे से जैसे कि बाहर आजाद हो गया हूँ। और फिर जैसे ही घर पे आए तो फिर हमारी दादी ने बोला, ले हो गई तेरी मुराद पूरी।
अच्छा।
तो मैंने बोला अब तो जितना भी कुछ करो, अब हम आजाद हो गए हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है
जी।
फिर वहां से संकल्प आया कि अब तो मधुबन जाना ही है, क्योंकि बहनें भी इसलिए रोकती थी क्योंकि बाबा का टर्न नहीं था उस समय
जी।
तो उन्होंने कहा कि जाना ही है तो बाबा मिलन में ही चलना है। तो मैं अब उनको कैसे बोलता कि बाबा मिलन तो मेरा रोज यहाँ हो रहा है, साकार में जैसे बाबा कंबाइंड है। लेकिन उन्होंने बताया कि अव्यक्त मिलन जब होता है उसके बारे में फिर बताने लगे और वो फाइनल हो गया। फिर हम लोग मधुबन की यात्रा शुरू हो गई।
कौन से वर्ष में आए?
98 एंड में
जी।
पहला
शांतिवन आए कि पांडवन?
पहले शांतिवन में आए
जी,
वहां रुके। फिर वहां से जैसे ही हम पांडव भवन आए हैं तो ऐसा लग रहा था ये तो सब मेरा देखा हुआ है
जी।
माना इमर्ज हो गया वो सारा, ये तो और ये भी मैं देख चुका हूँ, ये भी देख चुका हूँ। शांति स्तंभ में आए, ये भी लगा कि ये तो बाबा ने दिखा दिया है सारा, तो ये सारा कुछ इमर्ज हो गया कल पहले वाला
जी, 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 जी।
फिर जैसे ही हम ज्ञान सरोवर आए, बाबा के कमरे में आए बैठे, तो बस ऐसा लगा कि बाबा अब तो हमको यही आना है, यही रहना है। पहली बार में ही
जी।
फिर बाबा मिलन हुआ, उससे पहले सूरज भाई जी का क्लास होता है, तो भाई जी जैसा जैसा बोलते थे वैसा वैसा हम अभ्यास करके अपने आप को पूरा एकाग्र कर दिए और पूरी तरह से मौन सुबह से ही
जी।
और बाबा का आह्वान शाम को हुआ, बाबा का अवतरण हुआ, और जैसे ही बाबा की आवाज हमारे कानों में पहुंची, जैसे बाबा कहते हैं नहीं आज बाप दादा, तो ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरे से मिलने आया है
जी।
तो 1-to-1 जैसे बात हो रही है और वो मुरली छपती चली गई। उसके बाद बाबा जब वो दृष्टि दे रहे थे पूरे हॉल में, और उस समय शायद पहला ही था डायमंड हॉल में मिलन 98 एंड में
जी,
या दूसरा होगा, तो दादी जी भी मिल रहे हैं। दादी जी से भी जब सौगात होती थी तो दादी ही देते थे सबको, तो फिर स्टेज पर जाना हुआ, दादी से जो ओरा पालना का आता था, ऐसा लगता था कि ये कौन सी ऐसी आत्मा है, तो भगवान से भी जैसे कि सारी पावर भगवान की इन्होंने ली हुई है। तो यहाँ का सात्विक भोजन, यहाँ की दिनचर्या, ऐसा लगा कि ये मेरा ही है सब कुछ
जी,
मधुबन ही मेरा, ऐसा अनुभव होने लगा
जी, जी, जी।
और सारे भाई जैसे अनिल भाई ने भी बताया कि लगा ही नहीं कि हम कहीं और आए हैं
जी,
अपने घर में आए हैं
जी, जी। बहुत अच्छा। तो आप जैसे सुना रहे हैं संजय भाई, वैसे तो आप जब से ज्ञान में आए तब से आपको रोज बाबा मिलन का अनुभव होता था, लेकिन अव्यक्त बाबा को सन्मुख आपने आज से 24 वर्ष पूर्व बाबा को देखा और वो अनुभव आज तक आपको काम आ रहा है। मैं अनिल भाई से थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान में जब से हम चलते हैं तब से बाबा के मदद का अनुभव हर आत्मा को होता है, ऐसा कोई अनुभव बाबा के साथ का या बाबा की मदद का जो हर पल आपको वो साथ आता हो, वो अनुभव काम आता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको योग में अनुभव हुआ हो या सेवा के फील्ड में आपको बाबा की मदद का अनुभव हुआ हो, क्योंकि ये अनुभव ऐसी चीज है जो हमेशा हमको काम आती है। तो बाबा के कोई विशेष मदद का अनुभव अनिल भाई आपको हुआ हो या ऐसा होता रहा हो तो आप हमारे भाई बहनों को सुनाएंगे।
ऐसे ये मेरा अनुभव है, लेकिन जस्टिस में थोड़ा भावना ज्यादा होती है
जी।
लेकिन वास्तव में हमें अपनी बात स्थूल में भी किसी को कहना चाहिए, क्योंकि हर एक तो आपकी बातों को नहीं समझ सकता। लेकिन चूंकि हम शुरू में जब आए यहाँ मधुबन भी आए, तो हमने बाबा से यही कहा कि बाबा मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, आपको ही बोलना है, और मधुबन में मुझे रहना है ये भी मैं नहीं बोलूंगा, आपको ही बोलना है। तो मैंने बाबा को बोल दिया, और इस तरह से कोई भी बात होती थी हम बाबा को ही बोलते थे डायरेक्टली, और वो देखते थे कि ऑटोमेटिक होता था। तो इसी प्रकार किचन में हम उधर जा रहे थे और सूर्य भाई जी वहां बैठे थे, तो उन्होंने हमको बुलाया, अनिल मधुबन में रहोगे? तो हमारी तो अंदर से उसी समय तो हम बात करके आए थे बाबा से, तो फिर मैंने हाँ किया और रहा। और इसी प्रकार से मेरे जैसे एक बार मेरा लिफ्ट में भी एक्सीडेंट हुआ, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है अभी तक भी हमको भी समझ में नहीं आता है कि जैसे लिफ्ट ऊपर हो और आप नीचे हो, तो मेरे नहीं समझ में आता है कि हम कैसे आए, जैसे रेलिंग होती है घिस के नीचे आ सकते हैं जो विष्णुपुरी की है, उसमें तो आर्थ्रोस्कोपिक प्रॉब्लम हुआ उसमें। तो उस समय तो ऑटोमेटिक ही नेचुरल है कि अपने कभी भी देखेंगे पीकेज का अनुभव होता है भाई बहनों का, कि कहीं थोड़ी सी भी चोट लगेगी तुरंत या कुछ भी होगा तो बाबा तुरंत याद आता है और भले याद ना हो। तो हमने देखा उस समय हमारा आर्थ्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ अहमदाबाद में, तो उसमें जैसे दूसरे दिन ही हमको जाना था, पूरा उस समय पूरा पैर मेरा जो है बिल्कुल जिसे क्या कहते हैं उसको प्लास्टर जैसा था। तो मुझे ससे दीदी ने बोला था कि आपको जब जाना हो अहमदाबाद तो आप बोलना, हम गाड़ी भेज देंगे, आप चले जाना वहाँ। और उस समय पूरा बिजी था, विदेशियों की सीजन थी, डबल फॉरेनर्स बहुत उस समय तो बहुत ज्यादा होते थे ना, डबल फॉरेनर्स पूरा फुल था। तो हमें संकल्प चला कि बाबा की इतनी सेवा चल रही है और मैं एक तो मैं खुद ही सेवा नहीं कर रहा हूँ, दूसरा प्लस किसी और को अपने साथ लेके जाऊंगा, तो ये तो जैसे मुझे लगा कि बहुत जैसे बोझ जैसा होगा। मैंने कहा नहीं, हम किसी को और साथ नहीं ले जाएंगे हम कैसे भी। तो हमने हमें सुबह 10 बजे पहुंचना है अहमदाबाद, और हम शाम को शाम तक अभी मेरी कोई प्लानिंग नहीं कि कैसे जाना है। तो उस समय हम ऐसा ही देखते थे, कोई भी प्रश्न आता था हम तुरंत या तो बाबा से बात करते थे या मुरली निकालते थे। तो हमने मुरली की बुक निकाली और पेज खोला, तो वो पेज में निकला जिसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे पैर नहीं चलता है तो क्या हुआ, मन तो उड़ता है ऐसे। तो ये जो बाबा ने कहा ना, तो ये इतना संकल्प टच हुआ कि देखो बाबा एक एक टच करता। और इसके बाद हम 10 बजे तक पहुंच भी गए अहमदाबाद। वहां भी जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा आपकी गाड़ी कहाँ है, आपके साथ कौन है? मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला हमने, क्योंकि हमको बुद्धि में था कि नहीं हमको बाबा के घर का हम रिस्पेक्ट रखना है, नहीं आप हमको बस आप कर दो हम जाएंगे, हमारे साथ हैं आगे करके। तो हर पल हमने तो एक बार नहीं अनेकों बार अभी भी हम लोग बाबा की भाषणा से बाबा की पालना से हम लोग सभी चल रहे हैं। हर एक का अनुभव है और हर एक भाई बहन का यही अनुभव कि कोई भी समस्या आती है तो सीधा बाबा के रूम में।
जी सचमुच हम सब बाबा के बच्चे बाबा के साथ का हर पल हर क्षण अनुभव करते हैं। और वैसे तो ये सारगर्भित रूप से आप सुना रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा संगठन में रहते अनेक चुनौतियां आती है जीवन में, और वो बाबा की मदद के बिना हमें सफलता संभव नहीं है। संजय भाई, जैसे अनिल भाई ने बताया कि समर्पित होने के लिए आपके माँ का सहयोग रहा और किसी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं आई, आप पहली बार बाबा से मिल करके वापस गए, फिर आपको समर्पित होने का संकल्प कब आया, और समर्पित होने के लिए जब आप आए होंगे उस समय आपको और किसी प्रकार का कोई चुनौती सामने आया?
जी, जब हम यहाँ आए तो हमने यहाँ ही संकल्प कर लिया कि यहाँ ही आना है जी। तो ये बाबा के कमरे में दृढ़ संकल्प करके गए, फिर वहाँ जो भी हमारा कारोबार था वो हमारे साथ भाई भी साथ में रहते थे, तो मैं उनको सिखाता रहता था रोज कि ऐसे ऐसे करना है ऐसे, तो वो सीखते चले गए। फिर एक बार और बाबा मिलन का टर्न शुरू हुआ कि दोबारा भी जा सकते हैं जी। तो फिर मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मैं एक दो महीना यहाँ रहूं
सेवा में,
कि दो तीन बार बाबा से मिल लूं।
जी,
तो जैसे ही मैं उनको यही बताया कि मैं जाके आ रहा हूँ एक महीने के बाद, तो छुट्टी तो मिल गई कि ठीक है आएगा ही, जाएगा, जाके आना ही है। तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छी क्लासेस होने लगी और सूरज भाई जी ने एक लाइन बोल दी कि अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि भगवान खुद आपके पास चल के आए। तो मेन है ब्राह्मण जीवन में स्थिति बनाओ
जी,
तो उस पर ही हमारा काम चलता रहा कि सेवा और बाबा का कमरा, और हर बात को चैलेंज के रूप में लेते थे। जैसे कई लोग कहते थे कि नहीं भोजन के बाद आराम जरूरी है, उस समय योग कम लगता है, तो मैं भोजन करके ही, मैं अच्छे से भोजन करना है और बाबा के कमरे में बैठता हूँ, देखता हूँ कैसे नींद आती है। तो उसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया, तो वो बाबा की मदद मिलने लगी
जी।
मैं बोला कि अपने आप में ही मैं बात करता था कि 24 घंटे में किसी भी समय बिठा दो, हमारा योग पावरफुल होना चाहिए। तो ये मैंने नाइट भट्टी भी यहाँ हम बहुत करते थे शुरू शुरू में, कि रात भर बाबा के कमरे में बैठना है एक ही संकल्प में, तो वो सब चलता रहा और इतनी अच्छी स्थिति बाबा ने बना दी। और बाबा मिलन का टर्न आया तो जैसे ही हम डायमंड हॉल में बैठे हैं, और उस समय चारों ओर बाबा को चक्कर लगवाना था दादी को,
डायमंड हॉल,
हाँ डायमंड हॉल में, तो मैं उसी जहाँ व्हाइट चद्दर बिछी थी वहीं बाजू में बैठ गया
जी।
और वो बात सूरज भाई की लग गई थी कि स्थिति बनाओ ऐसी कि भगवान खुद चल के आए, तो मुझे लगा कि बाबा ने ही स्थिति बनाई, अब वही चल के इधर आने वाले हैं। तो बाबा जैसे ही ऐसे आ रहे हैं सामने से, बाबा मिलन हुआ, उसके बाद बाबा ऐसे करके आ रहे हैं। तो जैसे ही मेरे सामने आए और दृष्टि मिलन हुआ और बाबा जैसे कि मेरे को पहचान गए, मेरे संकल्पों में बाबा से बातचीत हो रही है कि बाबा बस आपको इतना नजदीक से देखना था, तो बाबा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, और ऐसे करते करते बाबा आगे निकल गए। फिर मैंने बाबा को फिर संकल्प दिया कि बाबा एक बार और, तो फिर बाबा ऐसे पूरा ऐसे पलटे, फिर ऐसे करके अब तो मिलते रहेंगे चलो। फिर सारे हॉल में बाबा का मैंने जब हाथ देखा ना, कि तीन तीन घंटे तक ऐसा ही हाथ रहा पूरा
जी।
और आज भी वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो बाबा अपनी पूरी एनर्जी के साथ हमें पालना दे रहा है आज दिन तक
जी।
तो वो अनुभव आज दिन तक हमारे साथ साथ है, वो बल देता है।
समर्पित कौन से वर्ष में हुए?
हाँ, फिर उसके बाद वो मिलन करके हम गए
जी,
और 99 एंड में ही एक साल में ही हम वापस आ गए। और वहां से तो विरोध तो होता ही रहा कि यहीं रह के सब कुछ करो, वहां जाके क्या है, वहां भी तो वही करना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को वहां ही रहना है। फिर ऐसे थोड़ा विरोध तो होता ही रहा
जी, जी, जी,
क्योंकि हम तीन भाई थे, फिर भी लोग सोचते थे ना कि भाई तीनों ही यही रहे। तो मैं तो वहां से आ गया, अभी दो भाई हैं, वो बिजनेस संभालते हैं, पापा हैं, वो भी साथ में ही बैठते हैं सब, और बहुत अच्छे से अभी सहयोगी हैं, संबंध संपर्क में हैं, आते जाते रहते हैं।
बहुत अच्छा, संजय भाई ने अपने समर्पित होने के समय का अनुभव हमारे सामने रखा। अनिल भाई, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय जो हम सब तो अभी साधारण स्वरूप में अच्छे माहौल में जी रहे हैं, अच्छे माहौल देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वर्ष पूर्व, पिछले एक दो साल पहले हम लोगों ने कोरोना काल देखा। कोरोना काल में बहुत विकराल समय हम सब ने देखा, तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ उस कोरोना काल में आपने विशेष क्या पुरुषार्थ किया, क्योंकि उस समय तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो नहीं रहे थे, डबल विदेशी भाई बहन भी नहीं आ रहे थे, इंडिया वाले भी नहीं आ रहे थे, वो समय को आपने कैसे सफल किया, उस समय आप विशेष क्या पुरुषार्थ किए, जो खाली समय था वो आपसे हम थोड़ा जानना चाहते हैं भाई।
ओम शांति। शुरू से ही मेरी जो एक खींच थी योग में, जो दो स्वरूप हैं, एक बीज रूप अवस्था और ज्वालामुखी, ये दोनों योग की मुझे बहुत खींच होती थी, और शुरू से ही हम इसका अभ्यास करना चाहते थे कि पूरी तरह से हम पारंगत हो जाएं, जब चाहे बीज रूप में और जब चाहे हम ज्वालामुखी योग पांचों स्वरूप का अभ्यास था ही, लेकिन ये दो स्वरूप पर हमारा फुल फोकस शुरू से ही रहा। हम जब से ज्ञान में आए उस समय से इन दोनों पर, तो इसलिए जब ये कोरोना काल था तो इससे पहले भी हम सोचते थे कि एक हमारा संकल्प रहता था बाबा से कि बाबा ने इतना हमें पालना दिया है, इतना हमें योग्य बनाया, तो एक अंदर से संकल्प आता था कि बाबा हमारी ऐसी कोई सेवा हो कि हम सबसे ऐसे बात करते थे बाबा से कि हम कोई एक दो घंटे वाली सेवा ना हो, 24 आवर्स जैसे हमें फील हो कि हाँ हम सेवा में बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो आप सभी भी, हम सभी सेवा में व्यस्त तो रहते ही हैं, बाबा की याद में जब हम रहते हैं तो सेवा स्वतः होती, तो हम स्थूल में भी सोचते थे इस बात को। तो इसलिए हमने देखा जब कोरोना काल में भी उस समय भी अचानक हम तो सेवा में रहे, उस समय भी किसी को क्वारंटाइन कराना है चाहे किसी को ये करना है, तो उस समय भी, तो उसमें भी हमको लगा कि ऐसा नहीं लगा कि हम सेवा में बिजी नहीं है। दूसरी बात रही कि मधुबन में उस समय जो भट्टियां चली ज्ञान सरोवर में, मैं अक्सर के देखा हूं क्योंकि डबल फॉरेनर्स तो यहाँ आते हैं, इंडिया के भाई बहनों को यहाँ रहने का बहुत कम मौका मिलता है ज्ञान सरोवर में, वो भले शांतिवन पांडवन रहते हैं लेकिन यहाँ बहुत कम चांस मिलता है, तो उनको बहुत तड़प रहती है। तो बहुत भाई बहने, बहुत टीचर्स बहने भी इतना उनकी आंखें भर जाती थी कि हमको पहली बार ज्ञान सरोवर में रहने को मिल रहा है, और ज्ञान सरोवर में इतना अच्छा वातावरण, खैर यहाँ वातावरण तो शुरू से ही बहुत अच्छा है क्योंकि हमेशा लोग बताते हैं कि आप देखेंगे, जैसे दादी प्रकाशमणि भी कहती थी कि अगर मधुबन है वास्तव में तो ज्ञान सरोवर, जबकि शिवरात्रि थी और दादी हर जगह इसके बारे में बोलती थी कि फ्लैग होस्टिंग करो, ये करो, ऐसे झंडा लहराओ, लेकिन जब ज्ञान सरोवर में आई उसी समय तो दादी ने कहा कुछ ये सब बातें नहीं, दादी ने कहा कि वास्तव में मधुबन है ज्ञान सरोवर। क्यों? तो दादी ने कहा क्योंकि ये ज्ञान सरोवर जो है सारी दुनिया की नजरों से दूर है, बाहर से कहीं से ज्ञान सरोवर दिखाई नहीं देता है, चारों ओर से, एक तो ऊंचाई पर भी है, पहाड़ी में बीच में भी है, और बाबा ने भी कहा है ना कि यहाँ साधारण आत्माएं भी आएंगी है ना, लेकिन बहुत उच्च स्थिति का फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो लगातार 2-3 वर्ष ना, तो 2-3 वर्ष यहाँ भट्टियां चली है और इसमें ज्ञान सरोवर कितना चेंज हुआ हम लोग देख रहे हैं, अभी तक भी उसका वातावरण, उसका वाइब्रेशन अभी लगी नहीं रहा कि ज्ञान सरोवर में हम लोग रहते भी हैं, कुछ न कुछ समस्या भी कभी आती है, लेकिन इन 2-3 वर्षों में इतना, तो ये योग का चमत्कार, योग का कमाल। तो हमारा एक तो ये अभ्यास रहा है कि हम बीज रूप अवस्था और ज्वालामुखी इसमें पारंगत बने और अनेक आत्माएं जो हैं उनको भी हम मदद करें, उनको भी इसमें हेल्प करें, मदद करें कि वो भी इसका अनुभव कर सके।
बहुत अच्छा अनिल भाई, आपने उस समय के अनुभव को साकार किया। संजय भाई, आपको तो अनुभव बहुत होते रहते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ आपका अनुभव, मैं और ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज सवेरे का आपका अनुभव आपने बहुत अच्छा सुनाया, प्रतिदिन कैसे बाबा अनुभव कराता है, आज सदगुरुवार सुबह बाबा को भोग लगा और उस समय क्या अनुभव हुआ वो आपसे मैं भाई बहनों के सामने सन्मुख सुनना चाहता हूँ, किस तरह से बाबा आपको अनुभव कराया, आज का सुनाइए।
आज जब बाबा को हम सब मिलकर भोग लगा रहे थे सुबह, तो जैसे ही मैंने बाबा को भोग ऑफर किया कि बाबा भोग स्वीकार करो, तो बाबा सिर्फ दृष्टि ही दे रहे हैं। मैं सोचा दृष्टि देने के बाद स्वीकार करेंगे, माना मुझे दृष्टि दे रहे थे बाबा, ये सीन माना दिखाई दिया मुझे। फिर बाबा ने दृष्टि देते देते फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा भोग स्वीकार कीजिए, तो फिर बाबा दृष्टि ही दे रहे हैं। फिर मैंने तीसरी बार बोला कि बाबा भोग स्वीकार कीजिए, फिर बाबा दृष्टि ही दे रहे हैं। चौथी बार मेरे बोलने से पहले ही ना बाबा ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और सीधा यहाँ ले आए बाबा बड़े भंडारे में, और वहां बाबा जैसे दृष्टि देने लगे, फिर उसके बाद रोटी डिपार्टमेंट में, फिर टोली किचन में, तो पूरे भंडारे में जैसे बाबा ने दृष्टि दी, फिर उसके बाद जहां भोजन रखा हुआ था सभी के लिए
डाइनिंग,
तो डाइनिंग हॉल में बाबा गए और एक एक जो भी सब्जी भोग बना हुआ था उन सबको बाबा जैसे ही दृष्टि दे रहे हैं ना, तो ढक्कन तो बंद था लेकिन फिर भी मुझे भी दिख रहा और बाबा को भी दिख रहा था, और बाबा की पावर उसमें जा रही थी। फिर दोनों डाइनिंग जहां जहां भोग था वहां बाबा ने सारी दृष्टि दी, उसके बाद वहां से ही जैसे बाबा ऊपर चले गए
जी।
तो एक जैसे कि करंट का अनुभव मुझे, वो ये अनुभव ऐसा है कि जिंदगी भर ये याद रहता है जी। क्योंकि ये बाबा ने कराया, हम कितनी भी कोशिश करते हैं वो जब तक उधर से सिग्नल नहीं आता है तब तक हम याद करते रहें, तो हमारी याद भी इतनी सहज हो कि लगे नहीं कि हम याद कर रहे हैं, माना स्मृति स्वरूप की याद हो, मेहनत वाली याद ना हो
जी।
तो ये अनुभव रहा आज का।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट में अब एक छोटा छोटा प्रश्न आप दोनों से, अनिल भाई सबसे पहले आपसे, कि हमारे भाई बहनों को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार से क्या अपने अपने तरफ से ईश्वरीय संदेश देना चाहते हैं, क्या पुरुषार्थ के लिए विशेष प्रेरणा देना चाहते हैं जो आप खुद करते हैं, और अपने भाई बहनों को इस समय आप अपने अनुभव से क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं जो इस समय अनुसार से वो अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाए।
पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना है, जो नए भाई बहने हैं, नए भाई बहने जो ज्ञान में आते हैं तो बड़ा दिल से कष्ट हो जाते हैं कि हमारे पास तो बहुत कम समय है, इतना समय हमको मिला नहीं। लेकिन बाबा ने पहले ही कह दिया है कि बच्चे आप जो ज्ञान में आए हैं ना उसी समय को जोड़ा जाएगा। आप मान लो 2 साल ज्ञान में, तो यही आपका 100% है, इसको आपने कैसे सफल किया है। तो इसीलिए हम इतना इसके लिए बस अब यही ध्यान रखें कि अब हम थोड़ा भी व्यर्थ ना जाने दें समय को। और रही बात कि हर एक आत्मा का ये संकल्प होता है, दिल होता है कि हम सीड स्टेज का या ज्वालामुखी योग का अनुभव करें, लेकिन होता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप दिन भर आत्मा का प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अचानक योग करने बैठते हैं तो नहीं होगा। अगर आप शाम का योग चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, तो दिन भर प्रैक्टिस हो आत्मा का, बिंदु बिंदु देखने का, जितना आप बिंदु देखते हैं तो ये योग सहज हो जाता, तो जितना प्रैक्टिस है। लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो बिल्कुल नए भाई बहने हैं जिनका योग नहीं भी लग रहा है, तो उनके लिए बाबा ने कहा एक लाइन है, एक ही लाइन है जिसमें चारों सब्जेक्ट है। बाबा ने कहा इस एक लाइन में 4 सब्जेक्ट हैं, दुआएं दो और दुआएं लो। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो हर एक के लिए भला सोचो, हर एक के लिए दुआएं दो। तो बाबा ने कहा कि इसी एक लाइन में ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है, 4 सब्जेक्ट इस एक लाइन में है
जी।
तो एक बात तेज ध्यान रखें, और जो भी बात करते हैं चलते फिरते ना, आप खाना खाने जा रहे हैं, मान लो दाल में नमक भी ज्यादा है, सब्जी में नमक ज्यादा है, या कुछ ऐसी छोटी छोटी बात भी जो करते हैं कि बाबा से बातें करें, बाबा ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ, हर पल आप बाबा से भी बात करते रहेंगे ना, तो आप ऐसा जुड़ जाएंगे कि आप सोए सोए भी जैसे बाबा से बात कर रहे हैं, फिर आपका योग बहुत सहज हो जाएगा। तो जिनको योग थोड़ा टफ भी लगता है तो उनको खूब रो ध्यान बाबा से ऐसे ही बातें करो, इमर्ज करके कुछ भी बात करो
जी, बहुत
तो
अच्छा।
बहुत योग सहज हो जाएगा।
बहुत सुंदर बात अनिल भाई ने सुनाया कि हमारे ज्ञान की आयु वो महत्वपूर्ण है, और उस आयु के अनुसार से अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र बना करके रखना है। संजय भाई आपसे मैं थोड़े शब्दों में चाहूंगा कि आप हमारे भाई बहनों को कुछ प्रेरणादायक बातें जो उनके जीवन के काम आए वो आप सुनाएंगे।
जिस प्रकार बाबा ने जब भी हमें जिस भी बच्चे को चुना है, यदि वो कुमार है तो कुमार जीवन में जो बाबा ने चुना है तो उसे कुमार ही रहना है, कुमारी जीवन में चुना है तो उसे कुमारी ही रहना है, ये जीवन अब बाबा का है। तो इस दृढ़ संकल्प को, चाहे वो अधर कुमार है चाहे अधर कुमारी, जब से बाबा ने हमको अपना बनाया है तो वो दृढ़ संकल्प कर लें कि ये जीवन अब केवल बाबा का है, बाबा जैसे चलाएंगे वैसे हमें चलना है। और दादी की एक बात, जानकी दादी जी की एक बात हमेशा मुझे याद रहती है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो जितनी बार ये स्मृति में लाएंगे उतनी बार हम व्यर्थ से डिटैच होते जाते हैं। तो कभी भी ये ना समझे कि हमें वो पालना नहीं मिली और हमें ये नहीं मिला, नहीं, सब कुछ अभी भी मेरे हाथ में है। हम इसका अनुभव करते रहें, निरंतर करते रहें, बाबा अंग संग हमारे साथ है।
बहुत अच्छा, आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भाई बहने भी जो प्यार से इतने देर तक बैठे, उनके लिए भी, आप सबके लिए भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुक्रिया। अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का यहीं समापन करेंगे और 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।